नमस्कार भारत, तारीख 9 नवंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। कैलिफोर्निया के रेस्तरां में 12 लोगों की जान लेने वाले हमलावर की हुई पहचान।
We have identified the suspect approximately an hour ago. Suspect was identified as...
नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस का आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन।
हम देश के लोगों को अवगत कराएंगे, याद दिलाएंगे और कहेंगे कि आपने पिछली बार जिस सरकार को चुना था उसने आपके विश्वास के साथ धोखा किया है।
छत्तीसगढ़ चुनावों में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में चुनाव प्रचार का क्या है हाल?
नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाजपा के लोगों को घुसने मत दो।
और बताएंगे फेक न्यूज के खिलाफ बीबीसी की पहल के बारे में, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक बार पर हमला करके 12 लोगों की जान लेने वाले हमलावर की पहचान एक पूर्व सैनिक के रूप में हुई है। 28 वर्षीय इयान डेविड लॉन्ग ने लॉस एंजलिस के करीब एक बार में पार्टी कर रहे छात्रों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। माना जा रहा है कि डेविड ने हमले के बाद अपने आप को भी गोली मार ली। पुलिस को हमलावर के मानसिक अवसाद से पीड़ित होने का शक है। संयुक्त राष्ट्र यमन में भुखमरी रोकने के लिए दी जा रही खाद्य मदद को 2 गुना करेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि यमन में हालात इतनी तेजी से खराब हो रहे हैं कि वो 1,40,00,000 लोगों को खाना मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। ये देश की आधी आबादी के बराबर है। इसी बीच हुदैदा शहर के पास सरकार समर्थक बलों और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो यमन जिंदा लाशों का देश बन जाएगा और लोग सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचे रह जाएंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रवक्ता अबीर इतीफा ने बीबीसी से कहा,
Millions of people are living on the edge of famine and the situation is getting worse.
10,00,000 लोग भुखमरी के मुहाने पर खड़े हैं और हर दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं। हमने हालात का जायजा लिया है जिसकी रिपोर्ट अगले हफ्ते जारी होगी। इससे पता चला है कि 1,40,00,000 लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं। इसका मतलब है कि देश की आधी आबादी को तुरंत खाद्य मदद की जरूरत है और अगर ये नहीं हुआ तो यमन जिंदा लाशों का देश बन जाएगा। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने शरण मांगने वालों की संख्या कम करने के उद्देश्य से नए नियम प्रकाशित किए हैं। अमेरिका में गैर कानूनी रूप से घुसने वाले लोग अब शरण नहीं मांग सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास राष्ट्रहित में अवैध प्रवासियों को रोकने का अधिकार है और उम्मीद है कि वो जल्द ही इस नए नियम पर हस्ताक्षर कर देंगे। हालांकि इसे अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है। अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन का कहना है कि देश में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार मिलना चाहिए, भले ही वो कहीं से भी देश में आया हो। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में जंगल में लगी आग की वजह से सैन फ्रांसिस्को के नज़दीकी शहर पैराडाइज में हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। गर्मी की वजह से लगी आग को बुझाने में सैकड़ों अग्निशमन कर्मी जुटे हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक आग की वजह से कई लोग फंसे हुए भी हैं। एक चश्मदीद ने बताया, हमें चट्टानों के दोनों ओर लगी आग के बीच से गाड़ी चलाकर गुजरना पड़ा। ये बहुत डरावना था। हम विस्टा पॉइंट पर थे जब पुलिस ने हमसे वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। इथियोपिया की पुलिस के मुताबिक देश के सोमाली और ओरोमिया क्षेत्रों की सीमा के पास मिली एक सामूहिक कब्र में लगभग 200 शव मिले हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक सोमाली क्षेत्र के पूर्व राष्ट्रपति आब्दी मोहम्मद के समर्थक लड़ाकों के अपराधों की जांच के दौरान ये कब्र मिली है। आब्दी मोहम्मद अगस्त में पद से हटाए जाने के बाद से ही जेल में हैं। सोमाली और ओरोमो लोगों के बीच चल रही जातीय हिंसा की वजह से बीते 1 साल में ही लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। नस्लीय हिंसा अप्रैल में सत्ता संभालने वाले सुधारवादी प्रधानमंत्री आबी अहमद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं के बच्चे जनने की दर में भारी गिरावट आई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक रेस्तरां में गोलीबारी करने वाले शख्स की पहचान हो चुकी है। संदिग्ध डेविड लॉन्ग अमरीकी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इस घटना में हमलावर और एक पुलिस अधिकारी समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
कैलिफोर्निया के एक बार पर हमला करने वाले की पहचान एक 28 वर्षीय पूर्व सैनिक के तौर पर हुई है, जिसके मानसिक रूप से बीमार होने का शक जाहिर किया गया है। हमलावर के बारे में बताते हुए स्थानीय शेरिफ ने कहा,
We have identified the suspect approximately an hour ago. The suspect was identified as
हमने संदिग्ध की पहचान कर ली है। हमलावर यान डेविड लॉन्ग हैं, जिनका जन्म 27 मार्च 1990 को हुआ था। वो 28 साल का था। हाल के सालों में पुलिस का डेविड लॉन्ग से कई बार सामना हुआ, लेकिन ये छोटी मोटी घटनाएं थीं। इसी साल अप्रैल में उसके घर पर पुलिस को बुलाया गया था। वो गुस्से में था और अजीब बातें कर रहा था। हमारी क्राइसिस इंटरवेंशन टीम और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस को तब उसे मानसिक अस्पताल भेजने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी और उसे मौके पर ही छोड़ दिया गया था। हमलावर डेविड लॉन्ग ने थाउजेंड ऑक्स इलाके के बॉर्डरलाइन बार एंड ग्रिल में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इस हमले में अब तक कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 10 गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुके डेविड लॉन्ग ने गोलीबारी क्यों की, ये अभी पता नहीं चल सका है। इस हमले में एक स्थानीय पुलिस अधिकारी रॉन हेलूस की भी मौत हुई है। हमले ने स्थानीय समुदाय को बुरी तरह हिला दिया है। मारे गए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देने आई एक महिला ने कहा, ऐसे हमले और कितनी बार होंगे, मैं रो रही हूँ क्योंकि ये बहुत दुखद है। और वो पुलिस अधिकारी, वो तो एक हीरो थे, अब उनके बच्चों का क्या होगा, ये सब कितना दुखद है। लेकिन बहुत से लोग बच भी गए हैं और ऐसा फिर होगा, ये ठीक नहीं है। अमेरिका में इस तरह का हमला होना कोई नई बात नहीं है। स्कूलों, चर्चों, कॉलेजों और रेस्तराओं पर हमले होते रहे हैं। बंदूक हमलों का निशाना बने लॉस वेगास, ऑरलैंडो, वर्जीनिया टेक, सैंडी हुक, सदरलैंड स्प्रिंग और पार्कलैंड जैसे नामों की सूची में अब एक और नया नाम जुड़ गया है, थाउजेंड ऑक्स।
कैलिफोर्निया हमले के संदिग्ध की हुई पहचान, ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से रूस की राजधानी मॉस्को में आज बहुपक्षीय वार्ता शुरू होने जा रही है और खास बात यह है कि इसमें अमेरिका और तालिबान के अलावा 12 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। क्या इस सम्मेलन से कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद की जा सकती है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने बात की अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़े मामलों की गहरी समझ रखने वाले पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई से।
देखें, ये रूसी हुकूमत मॉस्को में ये कॉन्फ्रेंस करवा रही है और पहले इसको सितंबर में करवाना था, लेकिन उस वक्त एक तो अमरीका ने बायकॉट कर दिया था और अफगान हुकूमत ने भी कहा था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और बाद में अफगान हुकूमत ने रूस से कहा कि इसको जरा मुलतवी करें तो इसके ऊपर मशवरा करते हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत का ये एक दलील थी कि जो भी कॉन्फ्रेंस हो, अमन की कोशिश हो अफगानिस्तान में, उसकी कयादत, उसकी लीडरशिप अफगानिस्तान को करनी चाहिए। और चूंकि ये सिर्फ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो कयादत है, लीडरशिप है, वो अफगानिस्तान के हाथ में नहीं है, अभी भी अफगान हुकूमत जो है वो इसमें खुद कोई उनका डेलीगेशन नहीं जा रहा, बल्कि अफगानिस्तान में जो हाई पीस काउंसिल है, जो अफगान हुकूमत के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका 4 रुकनी डेलीगेशन मॉस्को जा रहा है। तो इसमें फिर अमेरिका की भी नुमाइंदगी बहुत ही लो लेवल के ऊपर है। उनकी जो एम्बेसी है मॉस्को में, तो मेरे ख्याल में उनका एक नुमाइंदा जाएगा।
तो क्या कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी, कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
देखिए, इससे पहले भी रूस ने 3 कॉन्फ्रेंसें करवाई थी मॉस्को में। वो भी रूस का कहना था कि वो एक रीजनल, एक इलाकाई हल निकालना चाहते हैं, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। अब ये पहली बार उन्होंने अफगान तालिबान को भी राजी कर लिया है कि वो भी अपना डेलीगेशन मॉस्को भिजवाएं। تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ افغان ڈیلیگیشن جو ہے طالبان کا وہ قطر سے جو ان کا سیاسی کمیشن کا دفتر ہے وہ لوگ بھی آئیں گے, اور اگر یہاں پہ افغانستان سے کوئی حکومت کے تو نمائندے نہیں آ رہے لیکن ہائی پیس کونسل بھی افغان حکومت کا ایک ادارہ ہے تو اس کے بھی لوگ آئیں گے, تو ان کی آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے, یہ اکٹھے رہیں گے وہاں دو تین دن, تو یہ ایک سمجھ لیں کہ انڈائریکٹ قسم کی پیس ٹاکس وہاں پہ ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انڈیا, ایران, پاکستان, چائنا, سینٹرل ایشین ریپبلکس, تاکہ امریکہ, تو ان کے بھی نمائندگی تو ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ طالبان کی بات کو سنا جائے گا کہ طالبان کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے ممکن ہے کہ افغانستان میں امن قائم کیا جائے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ماسکو کانفرنس کے ذریعے افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا, میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں. جب تک امریکہ براہ راست کوئی حل نہیں چاہے گا اور جب تک افغان حکومت اور طالبان اور امریکہ کے درمیان مل کر مذاکرات نہیں ہوں گے, میرے خیال میں اس مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے.
افغانستان میں شانتی پر ماسکو میں وارتا, ادھک جانکاری دے رہے تھے ورشٹھ پترکار رحیم اللہ یوسف زئی.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 49, 41 اور 25 میٹر بینڈ یعنی 5875, 7430, 11995 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں نوٹ بندی کے 2 سال پورے ہوئے ہیں. سال 2016 میں 8 نومبر کی شام کو پردھان منتری نریندر مودی نے دیش کے نام سمبودھن میں گھوشنا کی تھی کہ آدھی رات سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ بند ہو جائیں گے. اس کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر کل جہاں وت منتری ارون جیٹلی نے نوٹ بندی سے ہوئے فائدوں کا ذکر کیا, وہیں وپکش نے اس کے نقصان گنائے. آج کانگریس نوٹ بندی کے فیصلے کے خلاف پورے دیش میں پردرشن کرنے جا رہی ہے. پوری رپورٹ سنیے بی بی سی سنواددتا آدرش راٹھور سے.
نوٹ بندی کے فیصلے کے 2 سال پورے ہونے پر کیندر سرکار اور وپکش کے بیچ گروار کو تیکھی بیان بازی ہوئی. کیندریہ وت منتری ارون جیٹلی نے اپنی سرکار کے فیصلے کا کھل کر بچاؤ کیا اور اس کے فائدے بھی گنا دیے. انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کے کارن دیش میں آئکر دینے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے اور جنتا کو فائدہ پہنچانے والی یوجناؤں کو لاگو کرنے میں مدد بھی ملی ہے.
Obviously it was required because high value currency occupied almost
نوٹ بندی کی ضرورت تھی کیونکہ 86% نوٹ اونچی قیمت والے تھے. دیش کی ارتھ ویوستھا کیش پر آدھارت تھی. نقد لین دین بینکنگ سسٹم سے بچا رہتا ہے جس سے ٹیکس چوروں کو بڑھاوا ملتا ہے. نوٹ بندی نے لوگوں کو خود کے پاس رکھے نوٹ بینکوں میں جمع کرانے کو مجبور کیا. بھاری ماترا میں کیش جمع کرانے والوں سے پوچھ تاچھ کے بعد 17,42,000 سندگدھ کھاتہ دھارکوں کی پہچان ہوئی. ان پر کاروائی ہوئی. بینکوں میں آئی نوٹوں کی باڑھ سے ان کی قرض دینے کی شمتا بڑھی.
ارون جیٹلی نے یہ بھی کہا کہ نوٹ بندی کا مقصد نوٹ ضبط کرنا نہیں تھا اور اس کا بڑا لکش نوٹوں کو اکانومی میں لانا اور اسے رکھنے والوں سے ٹیکس وصولنا تھا. لیکن کانگریس اس معاملے پر پوری طرح سے حملہ ور رہی, جہاں پورو پردھان منتری منموہن سنگھ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ نوٹ بندی سے ارتھ ویوستھا اور سماج میں مچی تباہی کا اثر صاف دیکھنے کو مل رہا ہے. وہیں ان کی سرکار میں وت منتری رہے پی چدمبرم نے بھی پریس کانفرنس کر کے مودی سرکار پر حملہ کیا.
آپ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے ہوئی نوٹ بندی کے کیا نتیجے رہے ہیں. جی ڈی پی میں گراوٹ ہوئی, لاکھوں لوگ قرض میں ڈوب گئے, لاکھوں نے نوکریاں گنوا دیں, ہزاروں چھوٹے اور مجھولے ادیوگ بند ہو گئے, 100 سے زیادہ لوگوں کی موت لائنوں میں کھڑے کھڑے ہو گئی. اس کے دشپرینام سب کے سامنے ہیں. اس لیے بی جے پی کو 2016 کے بعد لگ بھگ ہر اپ چناؤ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے. حال ہی میں آئے کرناٹک کے نتیجے بھی یہی بتاتے ہیں.
وہیں کانگریس ادھیکش راہل گاندھی کی اور سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ 8 نومبر کو بھارت کے اتہاس میں دھبے کی طرح دیکھا جائے گا جس سے دیش کی ارتھ ویوستھا تھم گئی. اس بیچ کانگریس نے نوٹ بندی کے فیصلے سے ہوئے نقصان کو مدعا بناتے ہوئے آج دیش بھر میں پردرشن کرنے کی تیاری کی ہے. کانگریس نیتا شکیل احمد نے بی بی سی کو بتایا,
سوابھاوک روپ سے ہم راجیوں کے مکھیالے میں, ضلع مکھیالے میں ہم دیش کے لوگوں کو اوگت کرائیں گے, یاد دلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے پچھلی بار یہ سرکار کو چنا تھا, اس نے آپ کے وشواس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, بھوشیہ میں ایسی کسی بات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے بھی شروع میں, عام لوگوں نے اس دیش میں سمجھا कि किसी अच्छे मंशे के तहत किया है, मगर अब धीरे 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 देश के लोगों को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जी की मंशा सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं थी।
कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि दो साल में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था, जीवन और नौकरियां नष्ट कर दी, लेकिन वो चुप हैं। इस तरह से जहां विपक्षी दल नोटबंदी को लेकर हमलावर रहे, वहीं केंद्र सरकार सुरक्षात्मक नजर आई। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इसका दंतेवाड़ा जिला नक्सली हिंसा के केंद्र में रहा है। इस इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादी छापामारों के बीच चल रहे संघर्ष ने कईयों की जाने ली हैं। ये एक रणभूमि तो रही है, मगर इस बार चुनावी रण में भी नक्सली हिंसा का रंग चढ़ गया है, जिसकी वजह से यहां प्रचार भी करना मुश्किल है। दंतेवाड़ा से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
दंतेवाड़ा के सुदूर इलाकों में सलवा जुडुम के नेता महेंद्र कर्मा की विधवा देवती कर्मा जंगल के गांव में ग्रामीणों से बात कर रही
अंग्रेजी तो चुनता दू।
ये माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा के कटे कल्याण का इलाका है। कटे कल्याण वो जगह है जहां की सड़क बनाने के दौरान सुरक्षा बलों के कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ चुनावी प्रचार भी सिर्फ संगीनों के साए में ही हो पाता है। इसीलिए तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सलवा जुड़ूम के नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी प्रचार के लिए नहीं जा सकती।
ये क्या बोलते हैं, जिरका, और ये एक गांव है कुमानगोल गांव, उसका नाम वो गांव में सबसे है।
तो वोट पड़ते हैं वहाँ या नहीं पड़ते हैं? पिछली बार पड़े थे कि नहीं पड़े थे?
वहाँ तो नहीं पड़ता है,
नहीं पड़ता,
जा नहीं सकते।
दंतेवाड़ा में कई ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भीमा मंडावी भी प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं।
देखिए, अभी की खबर है, नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाजपा के लोगों को घुसने मत दो। इससे हम कार्यकर्ता में डर तो है।
अपने 5 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड की चर्चा करते हुए देवती कर्मा कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके चुनावी क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है।
हमारे सरकार बनेगा तो हम लोगों के लिए सुविधा, आज रोड नहीं इधर है, भाजपा सरकार रोड को नहीं देख रही है, आज पानी जिसके जगह पानी नहीं है, आज लाइट नहीं है, बिना लाइट का अंधेला में रह रहे हैं।
भीमा मंडावी भी महेंद्र कर्मा के रिश्तेदारों में से ही है। वो देवती कर्मा के आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं,
देखिए 5 साल में उन्होंने एक बिजली खंभा तक नहीं लगाया जो 124 पंचायतें इस जिले में, इस विधानसभा में, मुझे लगता है कि मुश्किल से 20 पंचायत तक ही गए होंगे। वास्तविक जो विधायक किया है वो कहीं भी नहीं जाती है।
महेंद्र कर्मा की 2013 में हुई हत्या के बाद देवती कर्मा सीधे रसोई से निकलकर राजनीति में आई। वो मंडावी पर पलटवार करते हुए कहती है,
अरे वो MLA भी रहे तो किसके कौन जनता के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। आज 5 साल मैं अभी विधायक थी, उनके जितना ये 5 साल की उतना मैं जहाँ जगह मैं जाती थी, मेरा कितना हो सकता है उतना मैं जनता के लिए की।
दंतेवाड़ा में नक्सली हिंसा में आई तेजी ने यहाँ के प्रशासनिक अमले के साथ साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की नींद उड़ा दी है। पिछले 15 दिनों में कई हिंसा की वारदातें हुई हैं, जिसमें एक पत्रकार सहित कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। महेंद्र कर्मा की बेटी तुलिका सक्रिय राजनीति से दूर हैं, मगर वो इस बढ़ती हुई हिंसा का जिम्मेदार सरकार को ही ठहराती हैं।
सबसे पहली बात तो जो जिस सोच को लेकर के हमारे फादर जी ने जो सलवा जुड़ूम स्टार्ट किया, और ये मतलब लोगों की सोच के साथ उनकी डिमांड थी, तो वो उनके जाने के बाद तो अब कोई पॉसिबल नहीं, वैसा लीडर कोई है नहीं जो नेतृत्व करे इतनी बड़े पूरे समाज पूरे लोगों को लेकर के, जनों को लेकर के, और सरकार में तो इतनी हिम्मत है नहीं।
दंतेवाड़ा की इस सीट पर कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है, मगर पनघट की डगर ना तो देवती कर्मा के लिए उतनी आसान है और ना ही भीमा मंडावी के लिए, क्योंकि दोनों ही एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं। सलमान रावी, बीबीसी दंतेवाड़ा।
दंतेवाड़ा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित प्रत्याशी बल्लूराम भवानी जी के चुनाव चिन्ह।
श्रोताओं, फेक न्यूज़ हमारे दौर का सबसे कड़वा सच है। इससे निपटना बेहद ज़रूरी है और इसका बीड़ा उठाया है बीबीसी ने। 12 नवंबर को दिल्ली समेत 7 शहरों में एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई जाने माने लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। फेक न्यूज़ से लड़ना क्यों ज़रूरी है, इस पर हमारी सहयोगी सारिका सिंह ने बात की बीबीसी की भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा से।
बीबीसी ने फेक न्यूज पर बहुत लंबा चौड़ा काम किया है और इस बात को समझते हुए क्या है कि फेक न्यूज भारत के साथ साथ तमाम जगहों पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, और खासतौर पर जब भारत में ये चुनावी साल है, इस साल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे और अगले साल तो जनरल इलेक्शन ही है, और इस समय ऐसे माहौल में जहां मीडिया के विश्वसनीयता पर कई सारे सवाल हैं, बीबीसी एक बहुत ही यूनिक पोजिशन पर है जहां लोग अभी भी बीबीसी पर भरोसा करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम इस फेक न्यूज से निपटने के लिए, सवाल उठाने के लिए, पर एक तरह की बातचीत शुरू करने के लिए ये कार्यक्रम करें। इस कार्यक्रम के तहत कई सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कई सारी स्कूलों में जाकर के वर्कशॉप्स किया है जहां हम नौजवान छात्रों को ये बता सक रहे हैं कि आप रियल और फेक न्यूज़ में फ़र्क कैसे करें, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं एक तरह से इस देश के। दूसरा कार्यक्रम हमारा कई सारा ऐसे एडिटोरियल ऑफर्स हैं, ऐसी कहानियां हैं जिसे हम bbchindi.com और रेडियो पर जगह दे रहे हैं, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ से कैसे लोगों की ज़िंदगियां तबाह हुई और कौन लोग हैं जो उनके पीछे हैं और कौन लोग हैं जो इसका मुकाबला कर रहे हैं, इसे फैलने से रोक रहे हैं। और साथ ही एक शोध हम लोगों ने किया है गूगल और ट्विटर के साथ, जिसमें कई तरह की दिलचस्प बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिसे हम आने वाले दिनों में अपने श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे। खासतौर पर ये कि किस तरह की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिलता है।
जैसा आपने बताया, रेडियो, टीवी और वेबसाइट पर इस तरह की कहानियां दिखाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा 12 तारीख को किस तरह की तैयारी है, कहां कहां आयोजन है, इसका मकसद क्या है और इसका फायदा किसको होगा?
मकसद तो साफ ये है कि ये जो एक बड़ी चुनौती है उस पर हम सब मिलकर के बातचीत करें और उसका हल निकालें। सिर्फ समस्या पहचान लेने से तो आधी लड़ाई जीती जाती है, पर समस्या का निदान क्या हो वो पूरी लड़ाई की जीत का वो संकेत होता है, और वही करने की कोशिश है कि इससे कुछ और आगे बात निकले, हम कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ सके और फेक न्यूज़ ने जिस तरह से एक छद्म माहौल क्रिएट कर दिया है उसे तोड़ पा सके, खासतौर पर चुनावी माहौल में। हम लोग दिल्ली समेत 6 और जगहों पर कर रहे हैं, हमारी जो 6 नई भाषाएं हैं और हिंदी को मिलाकर के, इन सभी भाषाओं में अलग अलग लोकेशंस पर हम लोग ये पूरे दिन का कार्यक्रम 12 तारीख को होगा, जिसका कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी फेसबुक पर, हर एक भाषा के फेसबुक पन्ने पर, हिंदी को सुनने वाले bbchindi.com पर सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम का आनंद उठा पाएंगे।
बीबीसी की फेक न्यूज़ के खिलाफ मुहिम, अधिक जानकारी दे रही थी बीबीसी की भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में दिलनवाज पाशा मेरे सामने मौजूद हैं, उन्होंने हाथों में और सामने अखबार बिछा रखे हैं। जी बताएं।
जी शाहिद, दिल्ली के जिस दफ्तर से हम ये कार्यक्रम अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं उसकी खिड़की से भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखता है, राजीव चौक पर ये लगा है
जी, बिल्कुल।
और आजकल ये ध्वज जो है धुंध में ढका हुआ है। अखबार बता रहे हैं कि ये धुंध नहीं बेहद खतरनाक प्रदूषण है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस झंडे की बुधवार की तस्वीर प्रकाशित की है, बिल्कुल साफ साफ हम इसे देख सकते हैं, और कल यानी गुरुवार की, जिसमें ये धुंध में ढका हुआ है,
यानी दिवाली की रात के अगले रोज की तस्वीर जो है।
जी बिल्कुल, हिंदुस्तान ने ही शीर्षक लगाया है, ना पटाखे रुके ना प्रदूषण,
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने हैं।
जी बिल्कुल। और नवभारत टाइम्स में एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, बच्चे मास्क लगाकर जो है पटाखे फोड़ रहे हैं, अच्छा। उड़ रहा है तो सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। अखबार लिखता है 50 लाख किलो पटाखे फोड़ डाले, 77 गुना बढ़ा प्रदूषण, ये एक खबर है। इसके अलावा करीब 300 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का, ये खबर भी अलग अलग अखबारों में है,
यानी कि आदेश का पालन कर भी किया जा रहा था।
जी बिल्कुल। और द इंडियन एक्सप्रेस की ने तस्वीर प्रकाशित की है दंतेवाड़ा में हुए एक हमले की, जिसमें 5 लोग मारे गए थे, बस को निशाना बनाया गया, चुनाव कर्मियों को ये बस लेके जा रही थी, और ये तस्वीर अलग अलग अखबारों में आज प्रकाशित हुई है।
दंतेवाड़ा पे हमने अभी सलमान रावी साहब की रिपोर्ट भी सुनी, वहाँ चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है।
जी बिल्कुल। और अमर उजाला में आज तस्वीर प्रकाशित हुई है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी की, और उनके आगे हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, माफ कीजिएगा, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री जी, और उनके आगे हाथ जोड़े हुए खड़े हैं भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 91वां जन्मदिन था कल उनका, उन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे थे। जिक्र करेंगे उत्तराखंड की एक खबर का, जहां बीजेपी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद अपने एक शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि मी टू की जो शिकायतें हैं वो राजनीतिक पार्टियों में भी आने लगी हैं और उनमें कार्यवाहियां भी होने लगी हैं।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलनवाज पाशा। अब बात अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की। विदेशी बल्लेबाजों को पसंद करने पर भारत में ना रहने की सलाह देने पर कोहली को जबरदस्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी कि वो लोगों की किसी को पसंद करने की आज़ादी का समर्थन करते हैं। क्या कोहली को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था? सुनिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त की ये रिपोर्ट।
पूरी दुनिया में खिलाड़ी हो, कलाकार या फनकार, उसकी शोहरत उसके चाहने वालों से ही होती है। हो सकता है उसे कुछ ना चाहने वाले भी हों जिसकी कोई बात दिल को चुभ जाए। अब विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया जब एक फैन ने कहा विराट कोहली ओवररेटेड बल्लेबाज हैं, उनकी बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं है और उनकी तुलना में उसे अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को देखना अच्छा लगता है। जवाब में विराट कोहली ने भी आओ देखना ताओ कह डाला, मुझे नहीं लगता आपको भारत में रहना चाहिए, हमारे देश में क्यों रहते हैं जो दूसरे देश से प्यार करते हैं।
Overrated batsman, I personally have seen nothing special in his batting. I enjoy watching English and Australian batsmen more than these Indian. Okay. I don't think that you should live in India, then you should go and live somewhere else. No, why are you living in our country and loving other countries?
इसके बाद उनके कोच राजकुमार शर्मा ने कहा,
ये जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी है, विराट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो प्लेयर जो आपके देश का हीरो है, जिसने पिछले कुछ सालों में देश के लिए ऐसा कुछ किया है जो आज तक कोई भी बल्लेबाज भारत के लिए नहीं कर पाया था, और आप उसको ये बोलो कि आप ओवररेटेड हो, एवरीबॉडी हैज राइट टू स्पीक, बट ऐसा बोलना तो किसी को भी प्रोवोक करेगा।
वैसे तो ये क्रिकेट के मैदान से बाहर की बात है, लेकिन मैदान के अंदर भी विराट कोहली कई बार अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में दर्शकों को अंगुली दिखाना, शतक बनाने के बाद बैट लहराते हुए गालियां देना, IPL में गौतम गंभीर से भिड़ जाना और भी ना जाने कितने ऐसे किस्से। लगता था कि कप्तान बनने के बाद अब वो संजीदा हो गए हैं, लेकिन उनके इस ताजा बयान ने उन्हें फिर वहीं का वहीं खड़ा कर दिया है जहां से वो चले थे। ताजा मुद्दे पर क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं,
नहीं वो गुस्से में बोले होंगे, मुझे नहीं लगता वो एक्चुअली उनका ये कहने का मत होगा कि आप धीरे छोड़ के चले जाएं। वो खुद भी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। जहाँ तक आप क्रिकेट फैंस की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत भद्दे भद्दे रिमार्क्स पास करती है पब्लिक। मैं उनका कोई एजेंट नहीं हूँ, पर उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। इसी बात को है कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ओवररेटेड, वो बहुत ही गलत वर्ड था। वो
मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे हो, राजकुमार शर्मा कहते हैं,
सबसे बड़ी चीज है कि वो कप्तान है भारत के, कंट्रोल करना चाहिए अपनी इमोशंस, और थोड़ा सा हर्ट होके आप दिल से कुछ बोल जाते हैं जो, लेकिन मैं कहूंगा कि शायद आपको कंट्रोल करना चाहिए।
विराट कोहली तो खुद अपनी कप्तानी में IPL में बेंगलोर के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका के ABD Villiers भी शामिल हैं। उनकी इस बात से BCCI भी खुश नहीं है, और मुल्क छोड़ने की बात तो सियासत करती है, खिलाड़ी नहीं।
कोहली की टिप्पणी से विवाद रिपोर्ट सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। भारत में अब से थोड़ी देर में बजेंगे सुबह के 7, लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक बार पर हमला करके 12 लोगों की जान लेने वाले हमलावर की पहचान एक पूर्व सैनिक के रूप में हुई है। 28 वर्षीय इयान डेविड लॉन्ग ने लॉस एंजलिस के करीब एक बार में पार्टी कर रहे छात्रों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। संयुक्त राष्ट्र में यमन में भुखमरी रोकने के लिए दी जा रही खाद्य मदद को दोगुना करेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि यमन में हालात इतनी तेजी से खराब हो रहे हैं कि वो 1,40,00,000 लोगों को खाना मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने शरण मांगने वालों की संख्या कम करने के उद्देश्य से नए नियम प्रकाशित किए हैं। इथियोपिया की पुलिस के मुताबिक देश के सोमाली और ओरोमिया क्षेत्रों की सीमा के पास मिली एक सामूहिक कब्र में लगभग 200 शव मिले हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के शोधकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं के बच्चे जन्मने की दर में भारी गिरावट हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कम से कम 50 देश ऐसे हैं जहां मौजूदा जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए जरूरी संख्या से कम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।